कौन है? कृष्ण के दोनों गाल कपोल ये दो चंद्रमा हैं। अद्भुत बात है, तो मुख किसका नाम है इसमें चंद्रमा गिना रहे हैं, गाल को दो चंद्रमा कह रहे हैं, दो गाल। जिन्हें मणि दर्पण, मणि के दर्पण को जीत लिए, जितना मणि का दर्पण बनाया जाए और झलमल करे चिकना, उस तरह से भगवान के कपोल हैं गाल, ये दो चंद्रमा हुए। वास्तव में किसी भी उत्कृष्ट मणि से भी वे ज़्यादा दर्पण का काम करते हैं। सखागण तो कभी कभी अपना श्रृंगार श्री कृष्ण के गाल में देख करके करते हैं, उनको दूसरा दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं से भी श्री कृष्ण का शरीर कहीं भी दर्पण की तरह उसमें अपनी छवि दिखाई पड़ती है, साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो दुई गंड, गंड का अर्थ गाल, दुई गाल सूची कर्ण जिनी मणि दर्पण, जो मणि दर्पण को जीत लिए हैं, सही दुई पूर्ण चंद्र जाने, तो ये दोनों पूर्ण चंद्र हैं, कटा छटा नहीं, तो ये दो पूर्ण चंद्रमा हैं। और ललाटे अष्टमी इंदु ताहते चंदन बिंदु, सह एक पूर्ण चंद्रमा ने, और ललाट पर अष्टमी इंदु, अष्टमी का चंद्रमा। ललाट ऐसे थोड़ा लंबा जैसा रहता है, इसलिए उसको अष्टमी का चंद्रमा माने आधा चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अथवा कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी तिथि को चंद्रमा आधा उगता है, तो ये अर्ध चंद्र हुआ। और उस ललाट पर एक चंदन का तिलक लगाए हैं गोला गोला भगवान। भगवान कृष्ण हमेशा अनेक प्रकार के तिलक लगाते हैं, तो ज़्यादातर गोल कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तु नासाग्रे वर्मोक्तिकम कर तले वेणु करे कंकरम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ाम। उत्कल में उड़ीसा में इसका इतना सुंदर अभिनय कर रहे थे कुछ लोग, हम लोगों ने देखा है, बहुत सुंदर अभिनय, कैसे कैसे भगवान के अंग में क्या क्या है उसका भाव बताना, कुछ लड़कियां अभिनय कर रही थी, हम लोग देख रहे थे। सबसे जो हृदय पर असर किया कि तीन लड़कियां वो जगन्नाथ जी और सुभद्रा और बलराम जी बन गए, तो ऐसे हो गए सचमुच लगा कि उनके हाथ नहीं है। बीच में सुभद्रा जी ऐसे और दो ऐसे हाथ कर रही है, बहुत सुंदर लग रहा था। और कस्तूरी तिलकम ललाट पटले तो रोज गाया जाता था प्रतिदिन। तो यह जो चंदन बिंदु है श्री कृष्ण के ललाट पर, यह पूर्ण चंद्र है, यह भी एक पूर्ण चंद्र है। तो कितने हुए? 3.5 न, 3.5 हुए। और भगवान का मुख अपने आप में एक चंद्रमा है, तो 4.5 हुए, 4.5 हो गए, और 20 तो समझ ही रहे हैं, हाथ में 10 चंद्रमा नखचंद्र और पैर में नखचंद्र। कर नख चांदर हाट बंसी ऊपर करे नाट, कर नख चांदर हाट, और हाथ में जो नख हैं वे चंद्र हैं, तो 10 चंद्रमाओं का बाजार तो यहाँ लगाए हैं कृष्ण। हाट, हाट माने समूह, 10 चंद्रमाओं का हाट यहाँ है, जो बंसी ऊपर करे नाट, जो बंसी के ऊपर नाच कर रहे हैं, ये 10 चंद्रमा बंसी के ऊपर नाचते हैं। भगवान दोनों हाथ से ऐसे बांसुरी बजाते हैं, तो ये नखचंद्र चमकते बंसी ऊपर करे नाट, कर नख चांदर हाट बंसी ऊपर करे नाट, तार गीत मुरली रतान, तार गीत मुरली गान। ये चंद्रमा केवल नाचते नहीं हैं, गाते भी हैं। कैसे जानते हैं गाते हैं? तो वही मुरली गान, जो मुरली में गान निकलता है, तो ये चंद्रमाओं का गीत निकल रहा है साथ में। ऐसा लगता है ना कि मुरली के छिद्र पर जब अंगुली चल रही है, तो लगता है कि अंगुली ही गा रही है। तो गान तो यहाँ से होता है, मुख से वो हवा जा रही बांसुरी में, तब केवल स्वर भेद होता है अंगुलियों के कारण, अंगुली से स्वर निकलता नहीं, लेकिन देखने में लग रहा है कि 10 नख जो है नखचंद्र गा रहे हैं। पद नख चंद्रगण और पैर के जो नख गण है वो भी चंद्रगण है, तले करे नर्तन। तो दस चंद्रमा तो ऊपर इस राजा की चपलूसी कर रहे हैं, गा रहे हैं। राजा सिंहासन पर बैठा है कृष्ण का मुख, तो ये दस चंद्रमा तो ऐसे नाच गा करके और उसको रिझा रहे हैं। और तले करे नर्तन और नीचे दस चंद्रमा सिंहासन के बिल्कुल नीचे वो नाच रहे हैं, भगवान पैरों को थिरकाते हैं तो वो भी नाच रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो उनका गान क्या है? नुपुर एर ध्वनि जार गान, नुपुर की ध्वनि ही उनका गान है, वो दस चंद्रमा गा रहे हैं। जैसे सूत मागत बंदी जन गाते हैं ऐसे ये सब गा रहे हैं। नाचे मकर कुंडल और मकर कुंडल नाचते नेत्र लीला कमल, और श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वही लीला कमल। जैसे कभी कभी राजा हाथ में कमल लेकर कैसे घुमाता है, तो श्री कृष्ण के नेत्र ही लीला कमल। विलासी राजा सतत नचा है, और ये राजा बहुत विलासी है, विलास का अर्थ है लीला में विभोर, ब्रज विलास। विलासी राजा सतत नचा है, भ्रु धनु नेत्र बाण धनुर्गुण दुई कान। और उस राजा के पास एक धनुष है, धनुष क्या है? भ्रु भौं, ये भौं ही उसकी धनुष है और नेत्र बाण है, उसका देखना ही बाण है। राजा जैसे शत्रुओं को जीतता है, विजय करता है, दिग्विजय करता है, इस तरह से यह राजा श्री कृष्ण का मुख रूपी राजा चंद्रमा भौं की धनुष लेकर के नेत्र का बाण चलाता है। और धनुष के दोनों रस्सी कौन है? कान, दोनों जो कान है कृष्ण के धनुष की रस्सी है। और इसके इस लक्ष्य किस पर करता है? नारी गण लक्ष्य विधेता है, खास करके नारियों को लक्ष्य करता है। भगवान तिरछी चितवन से किसी स्त्री को देख दें तो फिर वो कभी भी जीवन भर दूसरे तरफ नहीं देख पाती थी। महाराज परीक्षित ने स्वयं वर्णन किया है, प्रत्याकृष्टुम नयन बबला जत्र लग्नम न सेक। अबलाएँ ज्योति स्त्रियां श्री कृष्ण को एक बार देख ली तो फिर वे अपने नेत्र को जीवन भर लौटा नहीं पाई। कहने का आशय है कि अब वो कुछ भी नहीं देख पाती थी कृष्ण के अलावा। कृष्ण के विरह में भले मर गए, अब दूसरा कुछ देखना उन्हें पसंद नहीं पड़ा। उनके नेत्र के वृत्ति का अपहरण कृष्ण ने सजा के लिए कर लिया। तो श्री कृष्ण का मुख रूपी राजा या चंद्रमा लक्ष्य कहाँ किया है? नारियों पर। इसका अर्थ है कि भगवान का रूप है बहुत ही आकर्षक है, बनितो स्वरूप शीलम। यही चांदेर बड़ नाट पसारी चांदेर हाट बिनी मुले बिलाय निज अमृत। लेकिन ये चंद्रमा का अद्भुत नाटक है कि ये अपने चांद का हाट पसार दिया है, चंद माने सौंदर्य का, चंद्रमाओं का, और बिना मूल लेके अपना अमृत बांटता रहता है। जैसे चंद्रमा अपने किरणों से अमृत प्रसारित करता रहता है, वैसे यह चंद्रमा बिना मूल लेके बिलाय निज अमृत। बिलाय का अर्थ है बिलवा रहा है, भगवान से सौंदर्य निकलता ही रहता है, तो बिना मूल लेके जहाँ तहाँ बस देता रहता है निज अमृत। कहो स्मित ज्योत्ना मृत्य कहा रे अधरा मृत्य, किसी किसी को स्मित ज्योत्ना मृत बांटता है, किसी किसी को देखकर मुस्कुरा देता है। तो यह है ज्योत्ना बांटना, प्रकाश देना। तो चंद्रमा प्रकाश देता है, इसके साथ साथ शीतलता देता है, अमृत का संचार होता है इसके किरणों में। तो यह कृष्ण चंद्र किसी किसी को स्मित ज्योत्ना मृत से सींचता है, किसी किसी को देखकर मुस्कुराता है, कहाँ रे अधरा मृत, और किसी किसी को अधरा मृत देता है। सब लोग करे आप्यायी, सब लोगों को तृप्त कर देता है। इस तरह कृष्ण के मुख का वर्णन रहे। विपुला या तारुण मदन मद घूर्णन मंत्री जार ये दुई नयन। ये श्री कृष्ण के जो दो नयन है, एक तो विपुल हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सुंदर। मदन मद घूर्णन, कामदेव के मद को भी चूर्ण करने वाले कृष्ण के आँख हैं, और यही ये दोनों मंत्री हैं कृष्ण। इस चंद्रमा के यही दोनों मंत्री हैं। ये राजा तो बैठा रहता है लेकिन मंत्री लोग हैं इधर उधर घूम घाम करके और कृष्ण का प्रचार करते हैं। तो ये दुई नयन लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद बदन। लावण्य केली के सदन है और भक्तों के नेत्र के रसायन है, गोविंद का मुख सुखमय है, आनंदमय। मैं इसलिए इस पद को पढ़ रहा हूँ कि भक्तों का मन कुछ अक्रूर जी के भावों को समझने में सक्षम हो सके, यही उद्देश्य है वास्तव में। द्रक्षा में नूनम सुकपोल नासिकम, मैं कृष्ण के नाक को देखूंगा, कपोल को देखूंगा, अलक को देखूंगा, क्या उसकी विशेषता है, इसी का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया जा रहा है। तो जार पूर्ण पुंज फले से मुख दर्शन मिले दुई आँखी की करी बेपाल। जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, बहुत जन्मों का सुकृत फलता है, फलीभूत होता है, तो से मुख दर्शन मिले तब उस व्यक्ति को कृष्ण के मुख का दर्शन मिलता है। जार पूर्ण पुंज फले से मुख दर्शन मिले दुई आँखी की करी बेपाल। हम दो आँखों से क्या कृष्ण का मुख पिए, दुई आँखी की करी बेपाल। पान करना मतलब तो देखना, बहुत लालसा के साथ जो देखा जाता है उसको पीना कहते हैं। जैसे भगवान वेदव्यास देव भागवत फल के विषय में कहते हैं पीवत भागवतम, भागवत को पियो। तो पीने का अर्थ है कि बहुत लालसा के साथ इसे पढ़ो और सुनो। तो श्री कृष्ण में इतना सौंदर्यामृत है, इतना सौंदर्यामृत कि दो आँख से उसका क्या पान किया जा सकता है, दुई आँखी की करीबे पान। द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ पीते नारे मन क्षोभ दुखे करे विधि निंदन। जब श्री कृष्ण का मुख पीने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो देखने की लालसा और दुगनी हो जाती है, दुगनी लालसा हो जाती है। और दुगनी लालसा होने पर फिर पीते हैं नेत्र, तो पीते नारे मन क्षोभ, तृष्णा बहुत रहती है और श्री कृष्ण का दर्शन होता नहीं है। थोड़े देखने को मिला और तब तक जो चले गए, अथवा देखने को मिले लेकिन आँखों पर पलक है, तो दुखे करे विधि निंदन। कृष्ण के दर्शन में बाधा पड़ने पर अतिशय दुख होता है, दुख में गोपियाँ निंदा करती हैं ब्रह्मा जी की। नादी लेकर लक्ष कोटि सबे दिला आँखी दुटी ताते दिला निमिष अच्छा दर। नादी लेकर लक्ष कोटि, ये मूर्ख ब्रह्मा हम लोगों को लाख या करोड़ आँख नहीं दिया, सबे दिला आँखी दुटी, सबको सब मिला करके दो आँख दिया, सबको दो आँख दिया और ताते दिला निमिष आच्छादन, और उस पर भी पलक का आच्छादन दे दिया। निश्चित है विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन नहीं जाने योग्य सृजन। ये ब्रह्मा जो है जड़ है और तपस्या करते करते इसका हृदय सूख गया है। रस शून्य तार मन, ब्रह्मा का मन रस शून्य है, वो तो किसी को इतना चाव से देखा नहीं, बस आँख बंद करके और नारायण नारायण जप करके सिद्धि पा गया, वो क्या जानेगा। ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान करते थे और दर्शन भी हुआ तो ब्रह्मा जी ने ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि हम आपको देखते ही रहना चाहते हैं, भगवान तुरंत अंतर्हित हो गए। तो भगवान की आज्ञा का पालन ब्रह्मा जी ने किया। यह भी बात सत्य है कि ज्यादा तपस्वी बनने पर हृदय सूखा हो जाता है और इसीलिए तपस्वी लोग बहुत क्रोधी देखे जाते हैं प्रायः ये वर्णन है। आपने सुना होगा जहाँ भी सांप आदि की बात आती है तो कोई ना कोई ऋषि ही सांप दिया है। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि जो लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, वो लोग क्रोध करते हैं, क्रोधी होते हैं। जो गृहस्थ होते हैं उनका क्रोध आदि सब खत्म हो जाता है, क्योंकि कितना क्रोध करें, बच्चा है, स्त्री है, उसकी सेवा करते करते वो बिना विष के सांप जैसे हो जाते हैं, अब उनकी हालत बिगड़ जाती है। तो क्या क्रोध करेगा, बच्चा ही क्रोध कर दे, कोई अपने सयाने बेटा को मारने चले डांटने तो वह ही पटक देगा उठा के। इसलिए उनका क्रोध आदि सब जो क्रोध एक विष है तो विष पूरा पूरा निकल, शांत रह। उनको स्त्री कमांड करती है, बेटा कमांड करता है, लेकिन सन्यासी और ब्रह्मचारी पर कोई कमांड नहीं करता, इसलिए वो फुफकारते रहते हैं, उनमें विष बना रहता है, विष बना रहता है। हमने देखा है थोड़ा सा कोई किसी को प्रणाम करने में चरण छू दे केवल डसना भर बाकी रहता है, बाकी फुफकार फुफकार बहुत मारते हैं, या उनके कोई लोटा को छू दे, कुछ भी कर दे। देखिए साधुओं का थोड़ी थोड़ी बात में वे उद्विग्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी समस्त तपस्वियों में प्रधान हैं और भगवान ने इन्हीं को इंचार्ज बना दिया कि तुम क्रिएशन करो, आँख बनाओ, नाक बनाओ, हाथ बनाओ, जिसको जैसा उचित समझो बनाओ। तो गोपियों के कहने का आशय है कि वो बनाने लगा तो ब्रज में जिन लोगों को जन्म दिया तो उन लोगों को भी दो ही आँख दिया, देखिए उसकी बुद्धि। तो ब्रज में जो लोग हैं वे तो कृष्ण को देखेंगे, तो कृष्ण को जो देखेंगे उनको चाहिए, उनके लिए ब्रह्मा को चाहिए था कि उनके शरीर के एक एक रोम में आँख बनावे, लाखों लाख आँख बनाना चाहिए था। लेकिन रस शून्य तार मन, वो कभी सौंदर्य देखा नहीं, इसलिए देखने वालों की स्थिति पर वो विचार कर ही नहीं सकते, सूखा हृदय हो गया। तब तप करते करते, तप का अर्थ आज सहना, आज सहते सहते हृदय और सूख गया, विचार नहीं किया। कोई रसिक अगर रचयिता होता वो जानता कि देखने में सुंदर रूप देखने में कितना आनंद आता है, और वो भी कृष्ण का, अगर ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज बनाया जाता, प्रधान बनाया जाता, तब न योग सृष्टि करता है। ये ब्रह्मा तो मूर्ख है, अरे बाप रे बाप। ये ब्रह्मा जी के लोक में ये बात रोज जाती थी कि गोपियाँ आपको गाली देती हैं, नारद जी आदि जाकर के कहते थे, लेकिन अब ब्रह्मा जी करें क्या, तो ये अब कुछ भी करो कहते थे ठीक गाली दे चाहे कुछ भी करे, अब तो हम चेंज करने वाले नहीं हैं। विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन, नहीं जाने योग्य सृजन, वो योग्य सृजन नहीं जानता है, गलत कर रहा है। देवताओं को कई आँख दे दिया है, जैसे इंद्र को 1000 आँख दिया है, और इंद्र देखता क्या है, केवल स्वर्ग की अप्सराओं को देखता रहता है, जो बिल्कुल कंडम विषय है जिसे नहीं देखना चाहिए, वो देखने के लिए 1000 आँख दिया, और कृष्ण को देखने वालों को 2 आँख दिया, और स्वयं 8 आँख रखा। अच्छा देवताओं की आँख बनाया तो उन पर निमिष नहीं दिया, ढक्कन नहीं लगाया, और मनुष्यों के आँख बनाया तो उस पर आच्छादन दे दिया, बराबर आँखें पलके गिरती रहती। कितना भगवान सुंदर और मधुर हैं कि उनको देखने में पलक का व्यवधान भी सहन नहीं होता है। ये वास्तव में कल्पना करने की बात है कितना सुंदर है कि गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देने लगती हैं पलक बनाने के कारण। ये सब श्री कृष्ण के रूप का चमत्कार है। विधि जड़ तपोधन, तपोधन का अर्थ तपस्या है, उसका धन है, और कोई ज्ञानवान नहीं। विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन, नहीं जाने योग्य सृजन, जे देखिबे कृष्णा नन तारे करे दुई नयन। वो जानता था कि जो लोग कृष्ण के आँख का, कृष्ण के मुख का दर्शन करेंगे उनको भी 2 नयन दिया। विधि है या है ना अविचार, विधि होकर के और ऐसा अविवेक, संसार का मालिक होकर के और ऐसा अज्ञान, मोर यदि बोल धरे कोटि आँखी तार करे तबे जानी योग्य सृष्टि तार। यदि ब्रह्मा से कभी हमारी भेंट होती है और ब्रह्मा हमारी बात पर यदि ध्यान दे, मोर यदि बोल धरे, धरे का अर्थ है कि हमारी बोली को और ध्यान से सुने, तो कोटियाँ की तारी करे, तो मैं यही कहूंगी कि जो ब्रज में हैं और खास करके स्त्रियां ब्रजनारियां, उनको एक एक करोड़ आँख दो, और यदि आँख देता है एक एक करोड़, तब समझूंगा कि हाँ योग्य सृष्टि तार अब ठीक से सृष्टि किया, यदि हमारी बात पर ध्यान दे तब। कृष्णांग माधुरी माधुर्य सिंधु सुमधुर मुख इंदु अति मधुस्मित सुकिरण। कृष्णांग माधुर्य सिंधु, कृष्ण का शरीर, कृष्ण का अंग माधुर्य का समुद्र है, सुघराई का और मधुराई का वो समुद्र है। सुमधुर मुख इंदु, तो कृष्ण का सर्वांग जो है वह माधुर्य का सिंधु है, और जैसे सिंधु से चंद्रमा निकला है, वैसे कृष्ण का जो मुख है वो इसी माधुर्य सिंधु से निकला हुआ चंद्रमा, चंद्रमा मतलब उससे भी एक समुद्र से भी सुंदर। अति मधुस्मित सुकिरण, और कृष्ण के मुख में जो स्मित है, मुस्कान है, वो तो और मधुर है, और उस चंद्रमा की वो किरणें हैं। तो ये तीने लागिल मन लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने, इन तीन में मन लग गया चैतन्य महाप्रभु का। क्या तीन? कृष्ण का सर्वांग सुंदर शरीर, और कृष्ण का मुख, और कृष्ण की मुस्कान, ये तीन में चैतन्य महाप्रभु का मन लगा हुआ था। ये तीने लागिल मन लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्त चालन, अपना हाथ चलाते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु श्लोक पढ़ रहे हैं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, तो वपु शब्द कहते तो सर्वांग दिखा करके कह रहे हैं, जैसे आरती हम लोग करते हैं तो नाभि पर करते हैं, चरण में करते हैं, मुख पर सर्वांग करते हैं, तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से कृष्ण के अंगों का भाव बताते हुए कहते हैं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, श्री कृष्ण का वपु मधुर से भी अति सुमधुर है। मधुरम मधुरम का अर्थ मधुर से भी अधिक सुमधुर है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, और इसमें भी जो वदन है, मुख है, वो मधुर से भी अति सुमधुर है, उससे भी सुमधुर है। और मधुगंध मृदुस्मित में तदहो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 मधुरम, और जो उसमें मुस्कान है मुख में, वह तो मधुर से भी अति मधुर है, उससे भी मधुर है, उससे भी मधुर है, यह अर्थ है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अर्थ कर रहे हैं। सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु, हे सनातन, कृष्ण का माधुर्य अमृत का सिंधु है, अमृत का समुद्र है। मोर मन सन्निपाती सब पीते करे मती, दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। मेरा मन सन्निपाती है, अर्थात मेरे मन को सन्निपात हो गया है। सन्निपात एक रोग है, शायद कलरा को कहते हैं क्या, हाँ, जिसमें प्यास बहुत लगती है, लेकिन उसमें पानी एक बूंद भी पीना मना किया जाता है। हमने देखा है हैजा में भी, कलरा में भी पानी पीना एकदम मना किया जाता है। जो भी उसको सन्निपात कहते हैं, रोगी गिर जाता है। प्यास, उसे प्यास बहुत लगती है जोर से, लेकिन वैद्य पहला उपचार करता है कि इसको कुछ भी पीने को नहीं देना चाहिए, ये पहला उपचार चिकित्सा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण का माधुर्य जो है वो अमृत का सिंधु है, अमृत का समुद्र लहरा रहा है, और मेरा मन सन्निपाती है, इसको सन्निपात हुआ है, प्यास बहुत लग रही है, और सामने अमृत का समुद्र लहरा रहा है और प्यास भी लग रही है, लेकिन दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु, लेकिन दुर्दैव रूपी वैद्य मुझको एक बूंद नहीं दे रहा। दुर्दैव क्या है? ब्रज में दुर्दैव का अर्थ यह है कि मेरा विवाह किसी और से हुआ है, घर के लोग देखने नहीं देते हैं, और कृष्ण भी गाय चराने चले जाते हैं या अपने घर में चले जाते हैं, ये है दुर्दैव। दुर्दैव वैद्य मुझको एक बिंदु पीने नहीं दे रहा है, और कृष्ण जहाँ भी जाते हैं तो रस समुद्र लहराता है, उनको देखने की इच्छा हो रही, लेकिन दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। इधर समुद्र है लेकिन बिंदु भी नहीं मिल रहा है। मोर मन सन्निपाती सबे पीते करे मती। उस समय रोगी को इतनी प्यास लगती है कि वह यदि नदी देखता है या तालाब देखता है तो सारा पानी पीने की इच्छा होती है, पी नहीं सकता है, लेकिन प्यास ऐसी होती है कि मन करता है कि पूरा समुद्र पूरा तालाब पी जाए, पूरी नदी का पानी पी जाए, पूरा घड़ा पी जाए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे मन को सन्निपात हो गया है, यही मन करता है कि कृष्ण को रात दिन देखता रहूं, देखती रहूं, इस भाव में बोल रहे। लेकिन दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु, दुर्दैव रूपी वैद्य इतना कड़ा नियम बना दिया है कि एक बूंद नहीं दे रहा है। यह अद्भुत उपमा दे रहे हैं। कृष्णांग लावण्यपुर मधुर है ते सुमधुर। कृष्ण का जो शरीर है कृष्णांग, वो लावण्यपुर, लावण्य के सौंदर्य के मधुरता का पूर है, बाढ़ है। मधुर है ते सुमधुर, जैसे मधुरम मधुरम दो बार है, मधुरम मधुरम बपुरस विभा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मधुर है ते सुमधुर, श्री कृष्ण का शरीर मधुर से भी सुमधुर है, और ताते से ही मुख सुधाकर, और उससे भी मुख जो है मधुर है ते सुमधुर, ताते है ते सुमधुर, तीन बार मधुर मधुर है। तो श्री कृष्ण का मुख सुधाकर है और मधुर से भी मधुर है, उससे भी मधुर है। तार से ही स्मित ज्योत्सना भर, तार जय स्मित ज्योत्सना भर, मधुर है ते सुमधुर, तार है ते सुमधुर, ताहा है ते अति सुमधुर, चार बार लगा रहे हैं। मधुर है ते सुमधुर, तार है ते सुमधुर, ताहा है ते अति सुमधुर, आप नार एक कणे डुबाए सब त्रिभुवने, दश दिक व्याके जाजपुर, स्मित किरण कर पूरे, पैसे अधर मधुरे सही मधु माता त्रिभुवने। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस तरह से कृष्ण माधुर्य के सागर हैं, और उसमें भी उनका मुख बहुत अधिक सुंदर है, उसमें भी जो उनकी मंद मुस्कान है वो तो कहना ही नहीं। तो कैसे इस अमृत का प्रसार कृष्ण सारे जगत में करते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण बहुत चतुर व्यक्ति हैं। अब उनके मंद मुस्कान को तो सब लोग देख नहीं पाएंगे, पर सबको ये अमृत बांटना है तो कैसे बांटते हैं। बंसी छिद्र आकाश से तार गुण शब्दे पैसे, बंसी में जो छिद्र है वो आकाश है और आकाश का गुण है शब्द। तो अपने मंद मुस्कान और अधरामृत को, अधरामृत के रस को कैसे बांटते हैं, तो बंसी के छिद्र में पहले भरते हैं और फिर उसको शब्द में बांधते हैं, ध्वनि रूपे पाया परिणाम है। लास्ट में कृष्ण का अधरामृत ध्वनि के रूप में परिणत होता है, जैसे बरहापीडम श्लोक में वो बात आई है, ध्वनि के रूप में परिणत होता है। जे ध्वनि चौधरी के धाय अंड भेदी वैकुंठ जाए, और वह ध्वनि जो बांसुरी की है जिसमें कृष्ण का अधरामृत आता है, वह इस ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ में चला जाता है। वो शब्द बोले पैसे जगत तेरे काड़े, और बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती जगत के जीवों के कान में प्रवेश कर। इस तरह से श्री कृष्ण जबरदस्ती अपना अधरामृत पिलाते हैं, तो शब्द के रूप में अंत में वो परिणत हुआ है। सभा मतोयाल करी बलात्कार, सभा मतोयाल करी बलात्कार आनी धारी विशेषतः जुआ तेरे गाने। तो सबको वो ध्वनि बांसुरी की ध्वनि बलात्कार पूर्वक पकड़ पकड़ करके कृष्ण के पास लाती है। यह भगवान का अधरामृत शब्दायमान होकर के और सारे जगत में सबको पकड़ करके लाता है, विशेष सतह जुवतीर गड़े, विशेष करके युवतियों को, गोपियों को या लक्ष्मी आदि सबको। यह भी वर्णन है कि स्वर्ग की देवांगनाएं भी भगवान कृष्ण को देखने के लिए रोज आती, ये सब वेणु गीत में वर्णन है। अच्छा, उस गीत का क्या स्वभाव है, उस शब्द का, कानेर भीतर बासा करे आपने तहाँ सदा स्फुरे, अन्य शब्द ना दे स्फुरी। यह भी एक उत्पात है कि बांसुरी का शब्द सदा कान में बसता रहता है, स्वयं स्फुरित होता रहता है, एक बार का बजा हुआ वही कान में भरा रहता है, अन्य शब्द ना दे स्फुरित, और अन्य शब्द को तो प्रवेश करने नहीं देता है। कहने का आशय है कि जो एक बार बांसुरी के गीत को सुन लिया वो दूसरा शब्द सुनना नहीं चाहता। तो ऐसा लगता है जैसे बांसुरी का स्वर ही दूसरे शब्द को आने ही नहीं देता और कान में गूंजता रहता है। आन कथा न सुने कान, आन बलिते बले आन, यही कृष्ण बंसीर चरित। अन्य बातों को सुनने नहीं देता है उस ध्वनि सुनने नहीं देती है, और व्यक्ति कुछ और बोलना चाहता है लेकिन और बोल देता है, ये कृष्ण के बंसी का चरित है। जब बाह्य ज्ञान हुआ चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से बाह्य ज्ञान, तब कहते हैं पुनः कहे बाह्य ज्ञाने अन्य कहिते कहलू आने। ये वाराणसी की बात है, जब बाह्य ज्ञान हुआ कह रहे मैं तो यहाँ चैतन्य हूँ, चाहे कृष्ण चैतन्य हूँ, चाहे जो भी, ये भाव आया और सनातन जी के साथ हूँ, गोपी भाव का आवेश कम हुआ कहने का आशय है। तब पुनः कहे बाह्य ज्ञाने अन्य कहिते कहलू आने, हाय हाय मैं कुछ कहना चाहता था और लेकिन और कहने लगा, कृष्ण कृपा तुम्हारे ऊपर है सनातन, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा है। मोर चित भ्रम करी निज स्वर्ज माधुरी मोर मुखे सुनाए तुम्हारे, कृष्ण मेरे मन को भ्रमित करके मेरे मुख से अपने स्वर्ज और माधुर्य का पान आपको कराना चाहे, देखो कैसा भुलवा दिए कृष्ण। मैं क्या उपदेश करना चाहता था तब तक के क्या बोलने लगा, आमी तो बाउल आन कहते आन कही कृष्ण र माधुर्य अमृत स्रोते जाई पर। सनातन मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ, क्या कहना चाहता था तब तक कृष्ण के माधुर्य स्रोत में बहने लगा। स्रोत मन जल की धारा विकराल, तो कृष्ण का माधुर्य अमृत का स्रोत है, मैं उसमें गिर गया बहने लगा। जो कोई आदमी धारा में पड़ जाएगा तो अब परवश बहेगा ही ना, मैं कृष्ण के माधुर्य सिंधु में बहने लगा। कृष्ण का माधुरी और महाप्रभु मुखे यह जय सुने सही भाष्य प्रेम सुख। एक तो कृष्ण का माधुर्य और वह भी महाप्रभु के मुख से, इसको जो व्यक्ति सुनता है वो प्रेमामृत प्रेम सुख में निमग्न हो जाता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जरयास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इन श्लोकों की व्याख्या चैतन्य चरितामृत में कहीं कहीं दी गई है। एक बार एक प्रश्न उठाया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि कुछ लोग कह सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत में इतना संस्कृत का श्लोक देने की क्या जरूरत है। वे स्वयं लिखते हैं, जब बंगला में लिख रहा है तो इतना संस्कृत का श्लोक भरने की क्या आवश्यकता है। तब कहते हैं कि अरे मैं तो बंगला में लिख रहा हूँ, लोक भाषा में लिख रहा हूँ, भागवत तो पूरा संस्कृत है, लेकिन फिर भी भक्तजन उसका आस्वादन करते हैं कि नहीं। तो पूरा संस्कृत में है फिर भी आस्वादन करने वाले करते हैं, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा उच्छिष्ट कहीं कहीं दिया हूँ, इसका तो आस्वादन कीजिए। आज मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत तो ये उक्ति मिली, भक्तों को तो इसमें आनंद मानना चाहिए कि संस्कृत में कुछ बातें कही जा रही हैं, क्योंकि सारा आध्यात्मिक अनुभव संस्कृत भाषा में है सारा, और अन्य जितनी भाषाओं में है वास्तव में वो बौरव किया गया, उधार लिया गया है दूसरे भाषा में। सारा आध्यात्मिक अनुभव भक्तों का, भगवान का, जो भी है सब संस्कृत में है, तो आस्वादन करना चाहिए। हमको बहुत आनंद आता है जब ओरिजिनल भागवत का श्लोक बोलते हैं, तो अर्थ तो समझ में कुछ आता ही है, अर्थ न भी समझ में आए फिर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो गोपियों का बोला हुआ है, यह श्लोक अक्रूर जी का बोला हुआ है। मैं भगवान का मुख देखूंगा और फिर भगवान के ऐश्वर्य की स्फुरणा हो रही है, तो कहते हैं कि जो इस समय पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं, अभी निकट ही हैं, इसी मथुरा में अवतार लिए और ब्रज में रह रहे हैं, लावण्य धाम ना, जो लावण्य के धाम है, मैं इसी शब्द की व्याख्या किया है। ये पढ़ा चैतन्य महाप्रभु का उद्गार लावण्य धाम ना। लावण्य शब्द का अर्थ होता है, ऐसे लवण का अर्थ होता है नमक, नमक कोई शब्द नहीं है, लवण शब्द है। लवण को ही अपभ्रंश में नमक कहते हैं। तो लवण का जो भाव है उसको लावण्य कहते हैं। किसी सब्जी, कोई सब्जी बनाइए आप और उसमें अगर लावण्य न हो, नमक न हो, नमक न हो तो उसमें कोई लावण्य होता ही नहीं, आदमी खाता नहीं। लावण्य का अर्थ है मधुर, और लवण को मधु कहते हैं। गुजरात में मीठा कहते हैं नमक को, मीठ, और कहते हैं जब नमक डाली अच्छा होता है तो बहुत मधुर है, बहुत मधुर है, नहीं तो नमक के बिना तो सब बेकार। इसको लावण्य कहते हैं। तो नमक जैसे टेस्ट बना देता है तो इसीलिए उसको लवण कहते हैं, और उसकी सत्ता के भाव को लावण्य कहा जाता है। एक शब्दकोश में लिखा गया लावण्य का एक अर्थ होता है लवणासुर का वन, मधुबन को भी लावण्य कहते। एक असुर था उसका नाम था लवण, तो उसके क्षेत्र को लावण्य कहते। तो ये तो अर्थ यहाँ आएगा नहीं। लावण्य मैंने माधुर्य, सुंदरता, रसिकता, उसको लावण्य। धाम ना, धाम का अर्थ आश्रय। श्री कृष्ण लावण्य के धाम है, सब प्रकार की सुंदरता, रसिकता, मधुरता के धाम है। तो ऐसे भगवान के श्री विग्रह का, भगवान का जब उपलम्भन, लंभन का अर्थ प्राप्ति और उप का अर्थ है निकट से, जब निकट से मुझे दर्शन होगा तो क्या मुझे मेरे नेत्रों का फल नहीं मिल जाएगा? निश्चित मिल जाएगा, मेरी आंखें सफल होंगी। एक बार निश्चित कह करके फिर अपि शब्द लगा रहे हैं। अपि शब्द का अर्थ है यदि स्या तर ही, यदि भगवान के रूप का मुझे दर्शन मिलेगा तो मेरी आँखों का साफल्य आज मुझे मिल जाएगा, मेरी आँखें सफल हो जाएंगी, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। और आगे ये बात बताई जाए, अगर कोई पूछे कि कैसे आप जानते हैं कि ये विष्णु है, तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। इसी पर वे कहते हैं यह इच्छेता हम रहितो पेशत सतो, जिसकी व्याख्या दोपहर के बाद की जाएगी। भगवत कथा और ब्रजमंडल की महिमा आएगी दोपहर के बाद की कथा में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। य इक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतः, स्वतेजसापास्ततमोभिधा भ्रमः, स्वमायात्मन् रचितैस्तदीक्षया, प्राणाक्षधीभिः सदने स्वभीयते। जस्या खिलामि वह भी सुमंगलैः, वाचो विमिश्रा गुण जन्म कर्मभिः, वाचो विमिश्रा गुण जन गुण कर्म जन्मभिः, प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्, यास्तद्विरक्तः शवशोभनामतः, सचावतीर्णः किल सात्वतान्वये, स्वसेतु पालामरवर्ज शर्मकृत्। यशो वितन्वन् व्रजयास्त ईश्वरो गायन्त देवा जदशेष मंगलम्। तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन् महोत्सवम् रूपं दधानं श्रियैक्षितास्पदम् द्रक्षे ममासन् उषसः सुदर्शनः श्री मनोरथ जी श्री अक्रूर जी मथुरा से रथ पर जा रहे हैं आ रहे हैं वृंदावन आ रहे हैं तो किस तरह मनोरथ कर रहे हैं कथा चल रही है तो शुरू से याद कर लेना चाहिए कि वे अपने विषय में भी सोचते हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम वाथा प्यर्हते दत्तम जद्रक्षम अद्य केशवम और फिर कभी सोचते हैं कि मैं अधम हूँ मुझे दर्शन नहीं होगा। लेकिन भगवान के गुणों की याद करके कहते हैं अवश्य भगवान मुझ पर कृपा करेंगे मुझे दर्शन देंगे यह पूर्ण विश्वास। तो भगवान के चरण कमल के दर्शन का सबसे पहले मनोरथ किए ये याद रखना चाहिए नहीं तो मैं किसी से कभी भी पूछ दूंगा बीच में ये पहला मनोरथ क्या था। भगवान के चरण कमल को देखने का मनोरथ था इसके बाद श्रीमुख के दर्शन का मनोरथ और चरणों के विषय में श्री अक्रूर जी बहुत बातें कह रहे थे बहुत प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। कृतावतारस्य दुरत्ययम तमः पूर्वे तरन जन नखमंडल त्विषा और इसके बाद जगर्चितम ब्रह्म भवाद भी सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद बने यद्गोपिका नाम कुचकुंकुमांकितम। यहाँ तक तो चरण कमल के दर्शन का मनोरथ कर रहे हैं चरण कमल के विविध गुणों का और लीलाओं का स्मरण करते हैं। इसके बाद मनोरथ किए द्रक्षा में नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोका रुणकंज लोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडाल कावृतम प्रदक्षिणम वही प्रचरन्ति मे मृगा। यहाँ तक कथा आई थी और इसके अगले श्लोक को भी हमने कुछ टच किया था। अप्याद विष्णोर्मनुज त्वमीशो भारावताराय भुवो निज क्षया लावण्य धामनो भवितोपलम्भनम मह्यम न नश्यात् फलमञ्जसा दृशः। अधुना पुनः अति लोभे लोभोद्रेकेण अतसे लोभ के उद्रेक से उद्रेक का अर्थ होता है बाढ़ विकास। हमारे पास एक शिकायत आई थी कि बहुत ज़्यादा संस्कृत बोला जा रहा है और कोई कोई बात समझ में नहीं आती है इसलिए मैं अर्थ कर रहा हूँ। भगवान के मुख कमल के संदर्शन से अतिशय भक्ति का उद्रेक हुआ लोभ बढ़ा तो भगवान के सर्वांग श्री विग्रह के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो रही। उद्रेक का अर्थ होता है बाढ़ माने भी कठिन पड़ रहा है किसी के लिए बाढ़ माने वृद्धि उद्रेक। अधुना पुनरति लोभोद्रेकेण सर्वांग संदर्शने मनोरथम करोति अपि इति अप्यद्य। भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण जो सर्वव्यापक हैं और सर्वत्र अवस्थित हैं सबको जन्म दिए हैं रूप गुण लीला आदि में जो बृहद हैं सर्वव्यापक हैं ऐसे प्रभु इस समय अधुना पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जदुवंश में अवतार लिए हैं। अक्रूर जी इस मनोरथ को करते समय कि मैं भगवान के सर्वांग दर्शन करूंगा तो भगवान के साथ अपना निकट संबंध जोड़ रहे हैं कि मैं जिस कुल में जन्म लिया हूँ इसी कुल में भगवान अवतार लिए, यह नैकट्य का चिंतन है, निकटता अनुभव कर रहे हैं। अप्यद विष्णु मनुजत्व में यीशु मनुजत्व को प्राप्त हुए हैं। मनुजत्व महाराज मनु के वंश में जन्म लिए, मनु के वंश में जन्म लिए, कैसे आप लोग मिला सकते हैं? वैसे एक दृष्टि से लगता है भगवान मनु वंश में जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन दूसरे दृष्टि से यह सिद्ध है कि वे मनु महाराज के वंश में जन्म लिए हैं। वर्तमान जो मनु हैं उन्हीं के वंश में, तो भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के सोम, सोम के बुध, बुध के पुरुरवा, और पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से जजाति, और जजाति से जदु हुए। इस तरह से देखने में तो ये मनु महाराज का वंश नहीं लग रहा है कि अत्रि से चला हुआ है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि महाराज मनु के जो प्रथम पुत्र हुए सुद्युम्न, वे भगवान शिव की व्यवस्था से इलावृत में ऐसा नियम पास कर दिया था शिव जी ने, उसके भीतर कोई आएगा तो स्त्री हो जाएगा। तो वो बेचारे सुद्युम्न गए अपने सिपाहियों के साथ, घोड़ों के साथ उस क्षेत्र में, और जाते ही स्त्री हो गए, स्त्री हो गए। तो जब वे स्त्री थे उस समय बुध ने उनको पसंद किया, तो पुनर्वा का जन्म हुआ। तो बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुनर्वा महाराज का जन्म हुआ। तो चूंकि इला जब स्त्री हो जाती थी तो हो जाता था, तो उसका नाम इला होता, तो वह पुरुष भी है और स्त्री भी है, इसलिए यहाँ मनु वंश में भगवान को कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी से चलने वाले वंश में तो वो स्वयंभू मनु आते हैं, और ये वैवस्वत मनु हैं, तो वैवस्वत मनु के ही पुत्र हुए ये सुद्युम्न, इसीलिए भगवान को कृष्ण को कहा जा रहा है मनुजत्व में युष, मनुजत्व में युष, जो मनुजत्व को अस्मद वैवस्वत मनु पुत्रत्व न जात जात से, तो यह निकट का संबंध जोड़ रहे हैं। किस लिए पृथ्वी पर अवतार लिए हैं? भुव भारावताराय, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। क्या भार है पृथ्वी पर? इस पर सिद्ध श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं भार दैत्यमय, दैत्यमय भार, और तन्मूल पापादिमयश्च। दैत्य जो होते हैं, जो भगवान के विरुद्ध चलते हैं, उस पृथ्वी पर भार हैं, और भार एक और है, उनके द्वारा जो पाप होता है वह पृथ्वी का भार है। तो सारा पाप ताप हरने के लिए, जन्मात्र को अपनी भक्ति में लगाने के लिए, शुभ कर्म में लगाने के लिए, दैत्यों के वध के लिए जो इस समय अवतार लिए हैं, अवतार लिए, तथापि न स्वतंत्र भंग इत्यादि, फिर भी भगवान की स्वतंत्रता भंग नहीं हो गई है। वे यहाँ आए हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए किसी के फोर्स करने से या कर्म के बंधन में बंध कर आए हैं। अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं स्वेच्छया, निजेच्छया, निजेच्छया का अर्थ अपनी इच्छा से, निजी इच्छा से आए भगवान यहाँ अवतार लिए हैं अपनी इच्छा से, अथवा निजानाम भक्तानाम इच्छया, या निज का अर्थ होता है अपना, अपने भक्तों की इच्छा से अवतार लिए। निजानम भक्तानम ब्रह्मादिनाम इच्छया, ब्रह्मा जी आदि की इच्छा से अवतार लिए। श्रीमद् भागवतम में अनेक बार यह बात कही गई है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान आए यहाँ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता, उनका परम ऐश्वर्य भागवत के अक्षर अक्षर में वर्णित है। भगवान कोई मनुष्य नहीं है, न कोई मुक्त है, न देवता है, कुछ भी नहीं, भगवान भगवान है, और वो भक्तों की प्रार्थना से आए। इस समय कोई अपने को भगवान कहे तो उससे पूछना चाहिए कि तुमको कौन बुलाया था यहाँ पर, याद है कौन बुलाया था, और पता था कि तुम कहाँ पर थे, नरक में थे कि कहाँ पर थे, और यहाँ जन्म लिए, कुछ पढ़े लिखे और 10-20 हज़ार चेला बना लिए तो भगवान हो गए। उसके पहले भगवान नहीं थे। ये दशा है यहाँ जीवों की। लेकिन श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भगवान की चर्चा हो रही है, वास्तविक ईश्वर। अपने भक्तों की, ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से भगवान इस जगत में आए हैं। किस लिए? भुवः भार अवताराय, अवताराय अवतरणार्थम, उतारने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर या पीठ पर बहुत लोड हो गया हो और वो व्यक्ति रो रहा हो, विकल हो, तो कोई दयालु व्यक्ति उसके भार को उतार दे, उस तरह से भगवान पृथ्वी देवी के भार को उतारने के लिए आए। जब 6 दिन के थे उसी दिन से भार उतारना चालू किए। भार दैत्यमय भार, जैसे पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, धेनुक, और ये सब बहुत भारी भारी भार थे। ये तो ब्रज में भी भार उतारते रहे, लेकिन मथुरा जाने के बाद तो वही काम रहा भगवान। यहाँ तो गाय चराने में बहुत समय बीत जाता था, रास आदि करने में, लेकिन मथुरा में जाने के बाद कुछ दिन पढ़ने गए अवंतिका, लेकिन उसके बाद बस दोनों भाई भार उतारना चालू किए। उतारने में बहुत टाइम लग गया है, पृथ्वी का पूरा भार। ऐसे पृथ्वी भगवान के चरण कमल से बहुत सुखी हो गई थी। पृथ्वी का भार उतारने के लिए, पाप आदि दूर करने के लिए, लोगों की मति को भक्ति में लगाने के लिए अवतार लिए हैं। लावण्य धाम न, इसकी व्याख्या हो चुकी थी, वे सौंदर्य के धाम हैं। तो उनका जब दर्शन होगा तो मह्यम दृश फलम अंजसा न न स्यात्, ना नहीं होगा, न न स्यात्, न नहीं होगा, हाँ होगा। क्या मुझे अपने आँखों का फल नहीं मिल जाएगा? अवश्य मिल जाएगा। न न स्यात्, न नहीं मतलब हाँ, न नहीं होगा, हम मुझे आँखों का फल मिल जाएगा, ये मनोरथ कर। तब इस पर एक प्रश्न उठता है कि यदि श्री कृष्ण विष्णु हैं, भगवान हैं, तो फिर ब्रज में, गोपियों के घरों में या वृंदावन के कुंजों में बिल्कुल आसक्त, गाय में आसक्त, स्वजनों में आसक्त, और यहाँ तक कि खेल कूद में आसक्त, माखन चुराने में आसक्त, ये सब कैसे संभव है? ईश्वर हैं तो फिर ये सब क्यों करते हैं? इसी का उत्तर देते हुए अक्रूर जी अपने ही मन में उठे हुए प्रश्न का स्वयं समाधान कर रहे हैं। यह इच्छिता हम रहितो प्यसत सतो स्वतेज सा पास तमो भिधा भ्रम स्वमा आत्मन रखते सत्तदीक्षया प्राणाक्ष धीर ही सदने स्वीय। असत और सत, असत का अर्थ होता है कारण, जो विद्यमान दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन किसी वस्तु का कारण होता है, और सत्य का अर्थ है जो सामने दिखाई पड़ रहा है, और इसको कारण और कार्य कहते हैं। सारा जगत कार्य कारणात्मक है, तो इसके भगवान साक्षी मात्र दर्शक हैं, देखते हैं, ईक्षण करते हैं। तो देखते हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि देखते हैं, देखने से ही ये सब कार्य होता है, कहने का आशय है भगवान की दृष्टि से सृष्टि होती है। उपनिषदों में और अन्य सभी ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान ने जब माया पर दृष्टिपात किया तो अभी सृष्टि हुई। ऐसे तो कई कार्य भगवान ने केवल संकल्प से किया, देखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन लोग समझें कि कुछ काम हुआ इसलिए भगवान देखे माया पर। उनका देखने का आशय ये नहीं समझना चाहिए कि आँख गड़ा करके देखे और इसी से माया में शक्ति आ गई, पर इतना भी अगर मान ले कोई कि चलो देखने से ही माया शक्तिमती हो गई, तो यह भी तो ईश्वर का ही कार्य है ना। क्या कोई पुरुष समर्थ है कि अपनी पत्नी पर देखे और देखते ही वो बीमारी से उठ जाए या जग जाए देखते ही और काम घर का करने लगे? ऐसा नहीं है। उसका नाम पुकार करके जगाना पड़ेगा, कोई दूसरा चीज ठोकना पड़ेगा, आवाज करना पड़ेगा, तब जगेगी। लेकिन भगवान अपनी माया शक्ति को देखे, देखते ही इसमें कार्य शक्ति आ गई। तो ऐसे माया के द्वारा भगवान कार्य कारणात्मक जगत के रचयिता है। इक्षिता का अर्थ यहाँ यह हुआ, दृष्टि मात्र से रचयिता है, सब कुछ करते हैं फिर भी अहम रहित, अहंकार से शून्य है। जरा विचार कीजिए, जो व्यक्ति सारे विश्व का निर्माण किया है अपनी ही शक्ति से सर्वत्र, वह इन वस्तुओं में कभी भी आसक्त नहीं हुआ, अहंकार शून्य है, भावना ही नहीं होती है कि मैं किया हूँ। और इस तरह से जैसे जीव बुद्धि करता है कि ये मेरा है या मैंने किया है, मैं भोगूंगा, मैं विश्व बनाया हूँ तो खूब इसको भोगूंगा। विश्व बना करके भगवान तो गर्भोदक गर्भ समुद्र में सोए रहते हैं। सोए रहने का मतलब तमोगुण में नहीं है, इसमें भगवान का वैराग्य प्रकट होता है। इतना विचित्र जगह है, कुछ भी है, लेकिन भगवान को इससे कोई मतलब नहीं, वे अपने आनंद में मग्न है। और जबकि इसी संसार को भोगने के लिए कितना झगड़ा, महायुद्ध, कलह सब चलता रहता, भगवान देखने भी नहीं आते, उनको पुकारना पड़ता है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि आइए आइए, तब भगवान आते हैं। तो जो व्यक्ति इस विचित्र विश्व का निर्माण करके इसमें आसक्त नहीं है, तो वह क्यों आसक्त जैसा दिखता है ब्रज में, इसका कुछ कारण है। तो भगवान वास्तव में आसक्त नहीं, जीव के समान नहीं है। हम कई बातें कहते हैं, जैसे अहम रहित, ये जीव जीव से विलक्षण बताया जा रहा है। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, अहम रहित इति अनेन जीव विलक्षण्यम उक्तम। और स्व तेजसा अपास्त तमोभिधा भ्रम, अपने तेज से चित शक्ति से अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न भेद और भेद से उत्पन्न भ्रम से वे सदा मुक्त हैं। तो इसके द्वारा जीवन मुक्त लोगों से भी भगवान की विलक्षणता बताई गई। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान कोई मुक्त पुरुष हैं, जीव हैं, बद्ध जीव हो चाहे मुक्त हो। जस्मा क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मी लोके वेद च प्रथित पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम। साधारण घर बनाता है व्यक्ति, दो चार बच्चा उत्पन्न करता है तो कैसा बंध जाता है, मेरा 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 मेरा, और खुलम खुला बोलते, शंका भी नहीं करते हैं, बातचीत में कहते वो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, सभी जानते हैं वाइफ है, तो मेरी क्यों लगा रहे हैं। व्यवहार में भी आदमी को सीखना चाहिए, ज़्यादा यहाँ मेरा मेरी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, घर द्वार बांधता है, आदमी कितना आसक्त हो जाता है। और जबकि उसको वह नहीं किया है, कई लोग मिल करके किए हैं, भगवान की शक्ति कर रही है, गुण सब गुण जो प्रकृति के गुण है वे करते हैं, लेकिन अहंकार विमुद्धात्मा करता हम इति मान्य, मान लेता है मैं किया। और भगवान वास्तव में किए हैं, कैसे किए हैं, आसानी से दृष्टि मात्र से किए हैं, और कोई था ही नहीं उस समय जो कह सके कि हमारा शेयर है, हम भी कुछ काम किए हैं इसलिए हम भोगेंगे ये करेंगे। तो ऐसे भगवान है, लेकिन अपने स्वरूप शक्ति से उनमें कभी अज्ञान नहीं आता है, कभी नहीं सोचे कि वस्तु मेरी है मैं भोगूंगा। एक तो अज्ञान नहीं हुआ भगवान में कभी भी, अज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वरूप को भूल जाना, अज्ञान न ज्ञान, तो अज्ञान हो जाना किसी तत्व को, सत्य को भूल जाना, ज्ञान नहीं रहना, इसको अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान के बाद एक दूसरी वृत्ति है, भेद होता है, भेद का अर्थ है अपने स्वरूप से भिन्न वस्तु में अभिनिवेश, इसको भेद कहते हैं। जैसे आत्मा अपने को विस्मृत होकर के अनादिकाल से भूल करके और देह को मैं मान लेता, इसको भेद कहते हैं। और भेद के बाद भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम का अर्थ है अत्यंत दुखमय स्थिति में दुखमय पदार्थों को भी सुखमय मान लेना, इसको भ्रम कहा है। यह जगत वास्तव में दुखालय है, लेकिन यहीं पर सुख प्राप्ति की योजनाएं चल रही हैं। कई प्रकार के मनुष्य हैं और मनुष्य समाज में बहुत योजनाएं चलती हैं और सबका प्रयास है कि हम विश्व को बिल्कुल स्वर्ग बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब विश्व शांति के लिए ही काम कर रहे हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो संसार में यह कहे कि मैं एक काम करना चाहता हूँ जिससे विश्व शांत हो जाए, ऐसे कोई नहीं है, सब शांति के लिए काम करें। लेकिन अधिकांशतः मनुष्य गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं क्योंकि भ्रम में है। भ्रम का अर्थ है किसी वस्तु को तत्व से न समझ कर उसे दूसरा समझ लेना, जैसे सर्प को रस्सी समझ लेना, ये भ्रम है। ये जीवों में स्वाभाविक है, भ्रम हो जाता है, लेकिन भगवान में कभी भ्रम नहीं है क्योंकि उनमें अज्ञान है ही नहीं। अज्ञान इसलिए नहीं है कि भगवान स्वरूप शक्ति से, ज्ञान शक्ति से सदा युक्त है। तो अपनी योग माया से, यहाँ ये अर्थ नीचे वाला है, अपनी स्व माया का अर्थ है यहाँ पर स्वरूप सत्य। अपनी स्वरूप शक्ति से भगवान इस जगत में जीवों की रचना करते हैं, कुछ जीवों को प्रकट करते हैं अपने धाम से। एक तो यह अर्थ ये है और इसलिए उनके प्राण बुद्धि और मन द्वारा भगवान साफ दिखाई पड़ते हैं, गोपियों के घरों में दिखाई पड़ते हैं। अभियते ईयते प्रतीयते जैसे शब्द है वैसे अभियते अभितः ईयते उनकी प्रतीति होती है, ऐसे हैं ऐसे हैं, डर रहे हैं, मैं यशोदा के भय से और बच्चों के साथ गायों का पेट भरने में लगे हैं, चराने खिलाने में बहुत असक्त हैं, वास्तव में वे हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि अपनी माया शक्ति के द्वारा वे जीवों के देह का निर्माण किए हैं और प्राण बुद्धि आदि बनाए हैं। तो ये लौकिक प्राकृत बुद्धि से, प्राकृत इंद्रिय से और प्राकृत प्राण आदि से भी भगवान का अनुभव होता है। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं या भगवान की श्रीमूर्ति देखते हैं तो हम लोगों का मन प्राकृत है, फिर भी भगवान को हम लोग देखते हैं, साफ प्रतीत होते हैं कि वे गिरिराज उठाए हुए हैं, वे काली के फण पर नृत्य कर रहे हैं, गोचारण के लिए जा रहे हैं या गाय चरा करके लौट रहे हैं। स्पष्ट ये मन में दिखाई पड़ता है जब प्राणाक्ष धी का अर्थ है बुद्धि, मन में दिखाई पड़ते हैं। यह भगवान की करुणा, यह दया, पर इससे उनका विष्णुत्व या उनका ईश्वरत्व कभी समाप्त नहीं होता है। कृपा करके भगवान इस जगत में आते हैं और मायाबद्ध जीवों को भी वह दिखाई पड़ते हैं, कृपा करके दृष्टिगत होते हैं। यद्यपि इन इंद्रियों में शक्ति नहीं है भगवान को समझने की, पर फिर भी वे इस तरह से कृपा करके दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वे अपनी स्वरूप शक्ति से युक्त हैं और उनमें जीवों जैसी अविद्या नहीं है, भ्रम नहीं है। यहाँ तो केवल अविद्या भ्रम ही रह गया है बस संसार में, लेकिन भगवान में यह सब नहीं है, सदा मुक्त है। इस श्लोक के बाद अब भगवान के जन्म कर्म और गुण आदि से युक्त वचन की महिमा बताई जा रही है। जस्याखिलामि वह भी सुमंगलै वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्रारंति शुंभंति पुनंति वै जगत यास्तद विरक्तः शव शोभ नामतः। अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं कि जिनके कीर्तन की, श्रवण की इतनी महिमा है, उन प्रभु का आज मैं साक्षात दर्शन करूंगा, अहो मम भाग्यम, मेरा कितना बड़ा भाग्य। जस्या खिलामी वह भी सुमंगलय, जीव में भ्रम सब जगह, मुझे याद नहीं था कि मैं वहाँ पन्ना रखा। जस संकीर्तनानी अपि जगत उद्धार काणी क्या। श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के कीर्तन आदि ही समस्त जीवों का उद्धार कर देते हैं, ऐसे प्रभु का मैं साक्षात दर्शन करूंगा। तो इस तरह से इसका अन्वय है, अखिला मीवा हानि, अमीव का अर्थ होता है पाप अपराध। जस्य खिलामि वह भी सुमंगल है। अमीव ह भी, हा का अर्थ होता है मार देना, अमीव ह भी, अमीव का अर्थ अपराध, दोष, पाप। जस्य खिलामि वह भी सुमंगल है, वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी। भगवान के गुण जैसे कृपालुत्व आदि और कर्म जैसे गोवर्धन धारण आदि और जन्म, कोई भी अवतार किस तरह से जन्म लिए, यदि भगवान के गुण कर्म और जन्म से कोई वाणी युक्त हो जाए, विमिश्रा, विमिश्रा का अर्थ मिल जाए कोई वाणी, यदि विशुद्ध भगवान के जन्म कर्म आदि को गाया जाए सुना जाए तो उसकी तो कितनी महिमा है कहा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान के गुण की चर्चा, कर्म की चर्चा, लीला की चर्चा और जन्म की चर्चा किसी वाणी में हो जाए, उस वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना उसमें पावनत्व आ जाता है कि वो जीवंत, जो श्रवण कीर्तन करते हैं उनको वे वाणियाँ जीवित कर देती हैं, जीवित कर देती हैं। इसका क्या जीवयंती, प्राणंती का प्राण डाल देती हैं। कौन वचन प्राण डाल देते हैं? जिन वचनों में, जिन वाक्यों में भगवान के गुण जन्म और कर्म थोड़ा मिश्रित कर दिया जाता है, यथा कथनचित। ऐसा नहीं है कि 50% या 25% वचन है और उस वचन में थोड़ा भी यदि भगवान का नाम मिला दिया जाए, भगवान का गुण मिला दिया जाए, तो वे वाणियाँ इतनी पवित्र हो जाती हैं, इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वक्ता श्रोता को प्राणंती, जीवित कर देती। अन्यथा भगवान का कोई व्यक्ति नाम नहीं बोलता है, गुण नहीं बोलता है, ऐसी वाणी से युक्त नहीं है तो मरा हुआ है। शास्त्र में कई बार इस बात को कहा गया, जीव छो निगंत सतु पाप कर्मा। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोलता है, भगवान का कीर्तन नहीं करता है, वो वास्तव में सांस लेते हुए भी मरा हुआ है। श्वसन मृतः कहते हैं, श्वसन मृतः का अर्थ सांस लेता हुआ मरा है। लेकिन भगवान के गुण कर्म और जन्म से मिश्रित वाक्य उसको जीवित कर देते हैं। ऐसा भागवत में भी कई बार लिखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, भगवान का कीर्तन नहीं करता है, श्रवण नहीं करता है, वह मरा हुआ है। और जीवित भी है तो उसके अंगों की बहुत निंदा की गई है। कान को सांप का बिल कहा गया है और हाथ जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करते हैं इनको सावव करो, सौ का हाथ कहा गया है, मुर्दा का हाथ कहा गया। और जो पैर भगवान के तीर्थ में नहीं चलते हैं, भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन पैरों को भी मरा हुआ कहा गया है। और द्रुम जन्म भाजो, उनको वृक्ष कहा गया है। अभी हैं मनुष्य के पैर, इधर उधर जाते हैं देखा जाता है, लेकिन भगवान के धाम आदि में न जाएं, परिक्रमा आदि न करें तो वे पैर वृक्ष की तरह है। कई बार इस पर विचार किया गया है कि ऐसे आप क्यों कहते हैं, तो सांस लेते हैं, तब कहते हैं भस्त्रा किम न श्वसन्ति, क्या लोहार की भाथी सांस नहीं लेती है? सांस लेने से क्या होगा, वो तो बहुत विशाल हवा खींचती है और निकालती। भस्त्रा किम न श्वसन्ति, तरवह किम न जीवन, क्या वृक्ष जीवित नहीं है? तो इस तरह से केवल जिए और अन्न बर्बाद करे, खाए पिए और भगवान का भजन न करे तो उसके जीने से लाभ क्या है, इसीलिए उसको मरा हुआ कहा गया, मरा नहीं। जिस व्यक्ति में भगवत चेतना नहीं है, भगवान के प्रति प्यार नहीं है, वास्तव में वह व्यक्ति मरा हुआ है। तो कान को सांप का बिल कहा गया है और आँख को कहा गया है कि ये मोर के पंख जैसे कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जो भगवान के श्री विग्रह को और भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करते हैं, जिनके भीतर भगवान रहते हैं, लिंगान विष्णुर न निरीक्षित हो, ये जो भगवान के विग्रह को नहीं देखते हैं, जो आंखें नहीं देखती और मोर पंख पर बनी हुई आंखों के समान है, मोर के पंख पर भी आंख जैसा आकार रहता है, लेकिन वो देखने का काम तो कर नहीं सकता है, मतलब बेकार है। उसे बल्कि आंख न होना ठीक, क्योंकि गलत दृश्य देखेगा तो आदमी नरक में जाएगा। जन्म से अंधे हैं वो बल्कि अच्छे हैं, उन लोगों से जो आंख पा करके भी भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करते। भगवान के कुछ लिंग हैं, लिंग का अर्थ होता है जहाँ से भगवान अपने को प्रकट करते हैं। तो एक तो श्री विग्रह है, श्री मूर्ति, जिसमें भगवान आते हैं अर्चा पूजा स्वीकार करने के लिए भक्तों के, और दूसरा उनका निवास स्थान है वैष्णव। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव तरा। वैष्णवों के हृदय में भगवान को देखना चाहिए। भगवान ने यह कहा है कुरुक्षेत्र में कि जो व्यक्ति तीर्थ में, पानी में, किसी कुंड में या गंगा जी आदि में तीर्थ बुद्धि करता है तो ठीक है, वो तो तीर्थ है, लेकिन किसी अभिज्ञ में जो मेरे तत्व को समझता है, मेरा भक्त है, उसमें तीर्थ बुद्धि नहीं करता है तो वह बैल है चाहे गधा है, सयो गोखड़। जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वाधि कलत्रा दिशु भौम्य पूज्य धी। जब तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर न तु प्रसिद्ध गोखर गोखर स एव गोखर। भगवान कहते हैं कि जो मेरे ज्ञान से संपन्न वैष्णवों में, मेरे भक्तों में तीर्थ बुद्धि नहीं करता है और उनकी उनका संग न करके, उनकी कथा न सुनकर इधर उधर तीर्थ में भटकता है, वही बैल है, वही गधा है वास्तव में। अब बताइए, तीर्थ करने वाले को भगवान कह रहे हैं वो गधा है बैल, क्या बात है। और ऋषियों की सभा में बोल रहे हैं और धाम में बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में भगवान थोड़े वहाँ झूठ बोलेंगे। ब्रज में कभी बोल लेते हैं माखन चुराने आदि, लेकिन वहाँ नहीं बोलेंगे कुरुक्षेत्र। और इतना ही नहीं कहते हैं, भौम इज्जधि का अर्थ है भौमे इज्जधि, भूमि के विकार में, पत्थर में और लकड़ी में मुझको लोग जो लोग देखते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मेरी भक्तों में तीर्थ बुद्धि नहीं करते हैं, उन तक को भगवान ने गधा और बैल कहा है। मूर्ति पूजा करते हैं लेकिन भक्तों में तीर्थ बुद्धि नहीं करते। सबसे ज़्यादा पवित्रता होती है वैष्णवों के संग से और उनके संग में भगवान का श्रवण कीर्तन करने से, ये प्रमाण है शास्त्रों में। जैसे महाराज परीक्षित प्रमाण, उन्हें शरीर छोड़ना था 7 दिन के अंदर और विचार हो रहा था क्या करें कि कृष्ण के पास जाएं, क्या करें। महाराज परीक्षित इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंच चुके थे। वे कहते हैं ऋषियों से, गायत विष्णु गाथा, भगवान की कथा कहिए, गान कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। लेकिन बहुत से मत के साधु वहाँ जुटे हुए थे, इसीलिए कोई कोई कहता था कि इनको दान देना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए या आत्मानुसंधान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, तब तक श्रील सुखदेव गोस्वामी आए। जो श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, भगवान वेद व्यास देव के पुत्र और शिष्य, तो उनके आने पर सब खड़े हो गए, तो सब शांत हो गए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा गया कि जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है, मरने की हालत में है और उसे भगवान का चरण कमल प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, आप बैठिए और सुनिए। और 7 दिन वो सुने और शरीर त्याग कर भगवान के धाम में गए। ये शोधित चीज है, कोई निर्णय करने के लिए बाकी नहीं है। दो चीज़ है, प्रथम श्रील सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि हे राजन, यह निर्णित विषय है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो म्रियमाण हो या न म्रियमाण हो, या सिद्धि चाहता है, भगवान को चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो उसे चाहिए कि भगवान के नाम का उच्चारण करे, योगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तन। डरिए मत, भगवान का नाम लीजिए, हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम राम राम।
योगिनाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तन, निर्णितम। इस निर्णितम शब्द पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसमें अब कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या साधन है, क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लो बस, ऐसा कहा। और इसके बाद कहते हैं इदम भागवतम नाम, यह भागवत है, इसे मैंने अपने पिताजी से पढ़ा है और इसे मैं आपको सुनाऊंगा। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत श्री नामात्मक है, श्लोक श्लोक में भगवान का नाम गुण दिए गए, तो वहाँ पर यही निश्चित हुआ कि भगवान के गुणों को सुनने से ही भगवान मिलते हैं, और ये निर्णित बात, संदेह नहीं है। तो कोई व्यक्ति यदि अपने को पवित्र करना चाहता है और वास्तव में उसे इच्छा है कि वह भवसागर के पार हो जाए, भगवान कृष्ण को समझे, भगवान कृष्ण में मति लग जाए, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अभिज्ञ वैष्णवों का संग करे, भक्तों का संग करे और उनके मुख से भगवान के गुणों को सुने, यही उपाय है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है और अन्य उपायों में लगा रहता है तो उसी को भगवान कह रहे हैं सएव गोखर। और बहुत बड़ी बड़ी बात कहकर कहते हैं, जस्यात्मबुद्धि कुणपेत्र धातु के, जिसकी आत्मबुद्धि कुणप में है, कुणप मतलब सौ मृतक शरीर में, जो शरीर तीन चीज से बना है, त्रिधातु के कफ बात और पित्त से बना है, और इसको कहता है माया है। जस्यात्मबुद्धि कुणपेत्र धातु के स्वधी कलत्रादिश, और अपनी पत्नी में और अपने बच्चे आदि में ही केवल स्वबुद्धि है कि ये मेरे हैं, और वैष्णवों में स्वबुद्धि नहीं, और अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, शरीर को मैं मान लिया है, शरीर के संबंधियों को मेरा कहता है, और कलत्रादिशु भाव में इज्जत ही, और भूमि के विकार पत्थर या लकड़ी में ही पवित्र बुद्धि रखता है, मतलब मूर्ति में, इसका अर्थ ये होता है। और जब तीर्थ बुद्धि सलील है, और पानी में तीर्थ बुद्धि है कि डुबकी मारूंगा पवित्र हो जाऊंगा, डुबकी भागवत में मारना चाहिए, इससे जैसी शुद्धि होती है वैसे तीर्थ से शुद्धि नहीं होती है। तीर्थ अवश्य शुद्ध करते हैं लेकिन उनमें बहुत टाइम लगता है, दीर्घ निषेवण करना पड़ता है, लेकिन तत्काल शुद्धि चाहिए तो भगवान की बात सुननी चाहिए। आजकल कोई एक काम आदमी बहुत फास्ट चाहता है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, गाड़ियों का स्पीड बढ़ गया और कहता आदमी टाइम नहीं, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो जल्दी शुद्ध होना है, शीघ्राति शीघ्र भगवान कृष्ण के चरणों में मन लगाना है तो उनके गुणों को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, उनका नाम उच्चारण करना चाहिए, ये उपाय है। जस्या खिलामी वह भी सुमंगलय वाचो विविश्रा गुणजन कर्म जन्म, सुमंगलय गुण जन्म कर्म भी, गुण जन्म कर्म का, भगवान के लीलाओं का, अवतार लीलाओं का और उनके उनके गुणों का दो विशेषण दिया जा रहा है। अखिला विवाह भी, अखिला नाम पापानी घ्नंती थी तय, अथवा अखिलानी पापानी घ्नंते थे, समस्त जीवों के पाप को जो दूर कर देते हैं, अथवा सभी पापों को दूर कर देते हैं। तो भगवान के गुण कीर्तन का कथा का दो प्रभाव है, एक तो पाप ताप समाप्त कर देते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मोक्ष पर्यंत दुर्वासना को समाप्त कर देते, मोक्ष की इच्छा भी एक बहुत भारी दुर्वासना है। ये हमारे आचार्य बारंबार इस बात को कहते जाते हैं, और दूसरे साधक लोग मुक्ति को कितना अच्छा कहते हैं, मोक्ष की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में मोक्ष की इच्छा को एक दुर्वासना कहा गया, बहुत खराब वासना है, भगवत सेवा की लालसा उसमें नहीं होती, ये स्वरूप के, ये जीव के स्वरूप के विरोधी इच्छा। लेकिन भगवान के नाम में गुण लीला आदि में ऐसी शक्ति है, कोई व्यक्ति यदि सुनता है और बोलता है तो सारी दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अघ की रही हरिचरित बखाने, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की लीला कहने के बाद भी क्या पाप रह सकते हैं? नहीं। अघ की रही हरिचरित बखाने, भगवान के नाम में गुण में इतनी शक्ति है कि कोई पाप टिक नहीं सकता है। जैसे अजामिल अनजान में भगवान का नाम ले रहा था लेकिन उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपी जद ब्याज हार विवशो नामो स्वस्थ न मरे। भगवान के पार्षद बैकुंठ से आकर बोल रहे हैं कि जिस समय इसने एक बार नारायण शब्द कहा इसी समय जन्म कोट्यंग सामपी कोटि कोटि जन्मों का इसका पाप नष्ट हो गया एक बार नारायण कहने से। जद ब्याज हार विवशो नामो स्वस्थ एनम हरे, जो भगवान के नाम का इसने उच्चारण किया उसी समय इसके पाप ध्वस्त हो गए। ये भगवान के पार्षद बोल रहे हैं, जबकि जमराज के दूत विश्वास नहीं कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, कहते थे इस पापी को ले जाने दीजिए नरक में, अब क्यों पक्ष कर रहे हैं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसमें पाप है ही नहीं, ये नरक का अधिकारी नहीं है। तो अखिला निवाह भी समस्त पापों को दूर कर देते हैं, एक तो ये साइड है और सुमंगल है। और जीव के लिए जितना भी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अच्छी में सबसे अच्छी चीज़ है सुमंगल है, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाना, अनुराग ये सबसे अच्छी वस्तु है। और इसके अलावा जितनी भी शुभ वस्तु की आप कल्पना करेंगे वो सब आ जाएंगे। मंगल सुमंगल है, कोई व्यक्ति यदि धन चाहता है या स्वर्ग चाहता है, अपने को सौभाग्यवान बनाना चाहता है, जैसे आज कल के शब्द में कहते हैं वो लक्की है, यदि वास्तव में आदमी अपना लक बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि भगवान के गुण कथा आदि का श्रवण करे, कीर्तन करे, यही भाग्य का द्वार खोल देगा सब तरह से। सुमंगल ही कहते हैं इसको, सुमंगल, केवल मंगल शब्द नहीं सुमंगल है, अतः मंगल, सारे मंगल भगवान के नाम गुण लीला में रखे हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति जो उच्चारण करेगा, सुनेगा, अनुमोदन करेगा, चिंतन करेगा, उसका मंगल ही मंगल होगा, उसके जीवन में कोई संकट नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अखिला विवाह भी सुमंगल है। और क्या करने से भगवान के नाम, पहले गुण बता रहे हैं, जैसे कोई भगवान का कीर्तन करे, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, हे कृपालु, हे परम सुंदर, हे मदन मोहन इत्यादि, मान लीजिए कोई कह रहा है तो भगवान के गुण प्रकाशित हो रहे हैं, चाहे उनका सौंदर्य या कृपा आदि। और कोई कहे हे देवकी नंदन, हे जशोदा नंदन, हे वासुदेव, ये भगवान के जन्म के लीला इसमें प्रकट हो रहे हैं। और कर्म, हे गिरिवरधारी, हे कालिय दमन, हे कंसारी या हे रस बिहारी इत्यादि कहे तो भगवान के कर्म इसमें प्रकट हो रहे हैं। तो ये जो मैं उच्चारण किया ये तो खांटी है, मैंने पूरा उसमें कोई दूसरी बात नहीं मिली हुई है, लेकिन ऐसे वचन जिसमें संसार का भी वर्णन हो लेकिन थोड़ा भी गुण कर्म जन्म मिला दिया जाए उस वाणी में, तो वह वाणी श्रोताओं और वक्ताओं को, सारे जगत को प्राणंती, सुंभंती और पुनंती। प्राणंती का अर्थ है कि जीवयंती, जीवित कर देती। जो व्यक्ति मरा हुआ है भगवान के विस्मरण में, भगवान को भूल करके मरे जैसा है, इसमें चेतना नहीं है, भगवत चेतना तो मरा हुआ है लेकिन उसको जीवित कर देते हैं, अर्थात वो भगवान को धीरे धीरे समझने लगता है, उस वाणी में शक्ति है। और इस संसार में जो परंपरा से किसी को कुछ मिला हुआ है भगवान के द्वारा, तो वाणी मिली हुई है। वास्तव में ब्रह्मा जी को वेद मिला और अर्जुन को गीता मिली, महाराज परीक्षित को भागवत मिला, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी दिया है ग्रंथ, उनके दान की जब चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कि प्रभुपाद जी का सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है मानव जाति के लिए, उनकी पुस्तकें हैं। ये सभी ग्रंथों में छपा भी है, प्रिंटेड है। सबसे बेस्ट दान है, और यह वास्तव में ईश्वर के द्वारा मिला हुआ सब आ रहा है, सबसे बड़ा दान। तो ये वचन है, ये गुण जन्म कर्म आदि मिला दिए जाए किसी वचन में, तब उस वचन की इतनी कीमत बढ़ जाती है कि जीवित कर देते हैं। और जीवित्वा जीवित करके सुभंति, सुभंति का अर्थ है शोभयंति, शोभा बढ़ा देते। शोभा बढ़ाने का क्या अर्थ है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृपालुत्व निर्मत्सरत निर्मत्सरत्वाद्यलंकार शोभयंति अलंकुरवंती। जब कोई व्यक्ति भगवान के का नाम लेने लगता है, कथा सुनने लगता है, गीत गाने लगता है, तो वह जीवित हो जाता है। और जीवित हो करके यदि वह लगातार गाता रहे सुनता रहे, तब उसमें कृपालुता का गुण आता है, सभी जीवों के प्रति दया करने लगता है और निर्मत्सर आदि हो जाता है। यह है शुभंति, वो सुंदर लगने लगता है, सुशोभित होने लगता है। जब किसी व्यक्ति में कृपालुता या निर्मत्सरत्व आदि गुण आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शरीर को सजाने से कोई अच्छा नहीं लगता है इस संसार में, उसमें गुण होना चाहिए, जीवों के प्रति दया, दया धर्म न तन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण। कोई व्यक्ति अपना मुख दर्पण में देख रहा था, तो कोई साधु होंगे, कबीर दास जी चाहे कोई होंगे, कहते क्या मुख देख रहे हो दर्पण में, दया धर्म है नहीं, मुख देख रहे हो दर्पण में क्या शोभा होगी। दया धर्म न तन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण। सभी जीव दुखी हैं, वास्तव में कृपा का गुण जिस व्यक्ति में है वो बहुत सुंदर व्यक्ति है। किसी दुखी जीव को देख करके हृदय द्रवित हो जाए, जैसे रंती देव महाराज, वे 48 दिन के भूखे थे, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था, मरने की हालत थी, लेकिन उस दशा में वे पानी तक दे दिए पीने के लिए और भोजन आदि सब दे दिए, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तपस्या करके साधु महात्मा कितने सुंदर लगते हैं, तो शरीर क्षीण होता है, कौपीन बांधे रहते हैं, लेकिन फुल पैंट पहनने वालों से अधिक अच्छा लगता है ना? ये वास्तव में तपस्या का तेज होता है, और कोई बुरा नहीं मानता है। दूसरा कोई आदमी कौपीन पहनकर घूमे तो सब लोग कहेंगे क्या पागल हो गया क्या, लेकिन साधु महात्मा जो तपस्वी है कौपीन पहनकर घूमते हैं तो सभी लोग प्रणाम करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। तो दया जिसमें हो, पर दुख निवारण की इच्छा जिसमें होती है, और दूसरे के विकास को देखकर, दूसरे के प्रगति को देख करके जिसमें मत्सरता नहीं आती है, द्वेष नहीं आता है, डाह नहीं आता है, यह बहुत बड़ा गुण है। यह तभी गुण आते हैं जब भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। जत्रास्तु भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरः, सभी गुण वहाँ आ जाते हैं और सभी देवता भी आ जाते हैं जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है। और भक्ति का अर्थ है श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन जले कर ऐसे च, ये मुख्य है। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, शुभंति अलंकृत कर देते हैं, वो व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है। कई बार भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को राजन संबोधित किए हैं, तो श्रील सनातन गोस्वामी या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि कई बार ऐसा अनुवाद किया, राजन का अर्थ है ओ विराजने वाले, वो चमकने वाले। महाराज परीक्षित आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, भगवान की कथा में आपकी ऐसी रुचि है, धन्य है आपकी बुद्धि, आप भक्ति के कारण बहुत प्रकाशमान हैं। महाराज परीक्षित ब्राह्मण के साप को सुन करके खिन्न हो गए थे, उनका चेहरा मुरझा गया था इस बात से, लेकिन जब भगवत कथा वे सुनने लगे तो उस समय उनकी भूख प्यास चली गई, सारा दुख चला गया, बल्कि खुश हो गए कि ब्राह्मण साप दिया, अच्छा किया, नहीं तो मैं गंगा जी के तट पर भागवत नहीं सुना होता। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बारंबार उनको राजन कहें। राजन का अर्थ है विराजन। अब बहुत सुंदर लग रहा है, हे कृष्ण भक्त्या प्रकाशमान, कृष्ण भक्ति से प्रकाशमान। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, कथा कहता है, सुनता है, तो उसको बहुत सुंदर हो जाता है।